आसमां के तारे जितने हैं अरमां हमारे उतने, चलो चलो कुछ कर दिखलाए, पंख लगे हैं अब उड़ जाए, आओ कुछ बन जाए। ऊंचाइयों को ललकारे, छूने छूने आसमां, ना तो तेज हवाओं का डर हो, अपना हो सारा।
अरे मोहन थोड़ा जल्दी करना भाई, अरे जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी रोजगार मिलेगा।
अरे सूरज भैया, सुना है और भी कई गांव से लोग मजदूरी के लिए आ रहे हैं।
अरे हाँ हाँ भैया, सही सुना है तूने।
राहुल, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं?
पता नहीं। अरे सूरज भैया, आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
अरे राहुल, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, अगर बात बन गई तो बहुत दिनों तक मजदूरी मिलती रहेगी।
पर भैया।
अरे बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना, अगर देरी हो गई तो काम हाथ से निकल जाएगा। चलता हूँ।
राहुल, किसी इमारत के निर्माण यानी कि बिल्डिंग बनाने में रोजगार के कौन से विकल्प हो सकते हैं?
ये तो मुझे भी नहीं मालूम नीलम। एक काम करते हैं, नदी किनारे पहुंचकर चीनी से ही इस बारे में बात करते हैं।
चीनी, एक बात बताओ, इमारत के निर्माण में किस तरह के रोजगार मिल सकते हैं? मैंने तो सिर्फ आदमी और औरतों को बिल्डिंग निर्माण में ईंट पत्थर पहुंचाने का काम करते हुए ही देखा है।
और जब हमारा घर बन रहा था तो उसका निर्माण करने का काम मिस्त्री ने किया था, तो क्या हमें भी घर बनाना सीखना पड़ेगा?
अरे ये तो रोजगार का सिर्फ एक रूप है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कई तरह के रोजगार के विकल्प होते हैं।
जीनी, अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है?
किसी भी इमारत, सड़क, पुल आदि के निर्माण के काम को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ लोग मजदूरी करते हैं, जैसे प्लास्टरिंग या फर्श बिछाने का काम, और कुछ लोग निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को चलाने का काम भी करते हैं।
तो जीनी, क्या इसके लिए भी किसी तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है?
जो काम एक व्यक्ति अपने हुनर के साथ कर सकता है, उन चीजों के लिए कोर्स की जरूरत नहीं है। ये काम करते करते सीखा जा सकता है। मगर हाँ, किसी भी इमारत के निर्माण कार्य के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके संचालन के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है।
पर मैंने तो निर्माण के समय लोगों को और भी काम करते हुए देखा है।
बिल्कुल सही राहुल, निर्माण के समय और भी कई काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम, ग्लास कटिंग या टाइल पॉलिशिंग इत्यादि, इनके लिए भी प्रशिक्षण उपलब्ध है।
तो जीनी, तुम हमें कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम प्रशिक्षणों की जानकारी दो।
बिल्कुल, पर एक मिनट, क्या आज बाकी बच्चों को जीनी से कुछ नहीं पूछना?
मुमकिन है क्या, क्या नहीं, कि हमें अभी पता नहीं, तो फिर चीनी से पूछो, 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 चीनी से पूछो। मुमकिन है क्या, क्या नहीं, ये हमें अभी पता नहीं, तो फिर पूछे चीनी से, पूछो, 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 चीनी से पूछो।
पहले मैं पूछूंगी।
मुझे चीनी से कुछ कहना है।
चीनी आज क्या बताने वाली?
इस कामों में किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है?
निर्माण से जुड़े कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं?
वैसे किन किन चीजों का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया में किस तरह के काम की संभावना है?
इस कोर्स के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?
इस कोर्स की अवधि कितनी होती है?
क्या इस कोर्स को करने के बाद शहर में ही नौकरी मिल सकती है?
क्या इस क्षेत्र में व्यवसाय मिलना आसान है?
क्या औरतों को भी इस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है?
जीनी, अब तुम ये क्या सोचने लगे?
यही कि इन सब सवालों के जवाब के लिए तुम्हें किसके पास ले चलूं?
तो किसका नाम याद आया?
मिस्टर विवेक, जो मिडकॉन के मैनेजर हैं। तो चलें उनके पास।
नेकी और पूछ पूछ, चलो।
ओ चौराहे पे मिले जब हमें पांचवी कोई राह, सोच हो नई दिन हो एक नया, हो नया अपना नजरिया।
नमस्ते विवेक जी।
जी नमस्ते।
विवेक जी, ये हैं राहुल और नीलम, ये दोनों आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और मुझे पता है आप उनका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हो, इसलिए मैं इन दोनों को आपके पास लेकर आया हूँ।
नमस्ते विवेक जी।
नमस्ते बच्चों।
सर, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय हैं?
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और पब्लिक वेलफेयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मैसन, इस तरीके की रोजगार उपलब्ध है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसमें फैब्रिकेटर जो ऊंची शेड बनाते हैं उन लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है, और जो पब्लिक वेलफेयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें पुल बांध बनाए जाते हैं, इनमें हेवी इक्विपमेंट मशीनरी यूज होती है। ऐसी इक्विपमेंट मशीनरी चलाने के लिए इक्विपमेंट ऑपरेटर की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है।
इन कामों को करने के लिए किस तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है?
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो अलग अलग तरीके के काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, उसमें हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है, प्लम्बिंग के लिए फिटिंग और पाइपिंग कैसे की जाती है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जिसमें क्रेन आ गया तो इसमें क्रेन चलाना कैसे है, लोड कैसे उठाना है, बैकहो लोडर जिससे मिट्टी उठाते हैं, ये मिट्टी उठाने का काम कैसे किया जाता है, ये मशीन चलाई कैसे जाती है, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिया जाता है।
अच्छा विवेक जी, इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिल सकता है?
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध है, जिसमें गवर्नमेंट ITI की तरफ से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेस उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन एकेडमी जो हैदराबाद स्थित है उनके माध्यम से कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस प्लम्बिंग, पेंटिंग, मैसन वर्क, फर्नीचर वर्क में उपलब्ध है, और मिटकॉन जो भारत की एक अग्रगण्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था है उनके माध्यम से क्रेन चलाना, बैकहो लोडर चलाना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ऑपरेशंस, लिफ्ट, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, इस तरीके के सर्टिफिकेट कोर्सेस उपलब्ध है। इसके अलावा इग्नू और नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के माध्यम से भी कई सारे कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिया गया प्रमाण पत्र विदेशों में भी मान्य होता है?
ये निर्भर करता है जॉब देने वाली कंपनी पर। अगर आपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से ही अगर कोई प्रशिक्षण लिया है तो निश्चित तौर पर इस कंपनी के इक्विपमेंट जहां भी यूज हो रहे हैं वहां पर आपको जॉब मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और सरकारी और निम सरकारी संस्थान जैसे ITI, नेशनल कंस्ट्रक्शन एकेडमी या मिटकॉन, इनके तरफ से दिए गए सर्टिफिकेट भी विदेशों में मान्य है। हाँ, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक ये प्रशिक्षण पूरा किया है और अच्छी तनख्वाह पर वो विदेशों में जॉब कर रहे हैं।
अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि कंस्ट्रक्शन के साथ इतने सारे अलग अलग व्यवसाय जुड़े हैं।
हाँ, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद विवेक जी।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बच्चों, अब क्या विचार है तुम्हारा, घर वापस चलें?
नहीं जीनी, अभी वापस नहीं जाना।
मुझे लगता है कि तुम दोनों कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को मिलना चाहते हो।
अरे जीनी, तुमने तो हमारे मन की बात जान ली।
तो चलो।
छुपी थी अब तक पहचान तुम्हारी, आज देखेंगे दुनिया सारी। अब मेरी बारी।
अरे जीनी, इतने दिनों बाद।
ठीक पहचाना रूबन भाई, आज मैं इन बच्चों को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। ये है राहुल और ये है नीलम।
रूबन भैया नमस्ते।
नमस्ते बच्चों।
तुमने जो व्यवसायिक प्रशिक्षण लिया ये दोनों उसके बारे में जानना चाहते हैं।
जरूर जीनी के दोस्त, मेरे दोस्त, पूछिए अपनी सवाल।
आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा?
मैं 12वीं पास होने के बाद कंप्यूटर कोर्स किया और मेरे को एक टीचर की जॉब मिल लगी,
जिसमें मुझे पर्याप्त आमदनी नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा उदास हो गया था। उसके बाद मैं पेपर में ऐड देखा क्रेन के कोर्स के बारे में, और मैं रिश्तेदारों से पूछा और उन्होंने बताया कि अच्छा कोर्स है, और मैं जल्दी से जा कर के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया, जिसका आज मुझे फ़ायदा मिल रहा है।
भैया, प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या क्या जानकारी दी गई थी?
मिडकॉन के द्वारा मैंने कोर्स किया, और मिडकॉन दो कोर्स चलाते हैं, एक क्रेन ऑपरेटर का और दूसरा बैकहो लोडर का, और दोनों कोर्सों में वो प्रैक्टिकल और थ्योरी कराते हैं। प्रैक्टिकल में मशीन के बारे में बताते हैं कैसे चलाते हैं, और थ्योरी में मशीन के कल पुर्जों के बारे में बताते हैं और ड्राइंग करके बताते हैं कि मशीन कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास हेवी व्हीकल लाइसेंस होना ज़रूरी है। हेवी लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा।
आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया और इसके लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ा?
मैंने यह कोर्स सोसाइटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत किया है। उनके लिए यह कोर्स मिडकॉन चलाता है। यह एक महीने का कोर्स है, इसके लिए मुझे 2500 शुल्क देना पड़ा।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के कितने समय बाद आपको नौकरी मिल गई और इसमें आपकी आमदनी कितनी हो जाती है?
प्रशिक्षण के एक महीने के बाद मुझे नौकरी मिल गई, और मेरे पास हेवी व्हीकल लाइसेंस था जिसके चलते नौकरी जल्दी मिल गई, और मेरी सैलरी करीब 7500 रुपये है, जो 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद वो 9000 चले जाएगा, और कंपनी पे डिपेंड करता है कि हर साल वो कितनी सैलरी बढ़ाता है।
ये ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी के कैसे अवसर हैं?
ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे स्टील प्लांट्स हो गए, ऑयल फैक्ट्रीज़ हो गए। लेकिन एक कोर्स के साथ अगर आपके पास ITI फिटर है तो आपको अच्छी सैलरी और मिलेगी, और इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप गल्फ कंट्रीज़ में जा कर के अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं।
रूबिन भैया, आपने हमारे साथ अपना अनुभव बांटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बच्चों, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
जीनी, अब हमें वापस चलना चाहिए।
अरे नीलम, अभी हमारे पास थोड़ा समय है,
तो क्यों ना इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा और जाने।
तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने अनुभव के बल बूते पर कई युवकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर स्वरूप जी, कैसे हैं आप?
जीनी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
बहुत बढ़िया। ये हैं राहुल और नीलम, ये कंस्ट्रक्शन उद्योग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलवा दूं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, पूछो क्या पूछना चाहते हो।
डॉक्टर स्वरूप जी, आप अपने और अपने काम के बारे में कुछ बताइए।
मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और निर्माण उद्योग में तकरीबन 35 साल से काम कर रहा हूँ, और जिस संस्था के लिए मैं काम करता हूँ उसका नाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको हम CIDC भी बोलते हैं। कई काम हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए करते हैं, जिनमें जो प्रमुख काम है वो है लड़कों को लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ट्रेड्स में।
अगर कोई छात्र अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी ना कर पाया हो तो उसके लिए इस क्षेत्र में किस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध हैं?
निर्माण उद्योग में हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी पढ़ाई सारी उम्र तक चलती रहेगी, और इसलिए स्कूल यदि आप पूरा नहीं कर सके या किसी वजह से पढ़ाई आपकी बीच में रुक गई तो उससे आपकी बढ़त के ऊपर में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप विधाएं सीख सकते हैं, कारीगर बन सकते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर बन सकते हैं, और उसके आगे यदि आपने 10वां क्लास पास किया है तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, बैचलर प्रोग्राम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं।
वैसे भारत में इस क्षेत्र में कितनी नौकरियां उपलब्ध हैं?
एक मजे की बात बताता हूँ, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं, और हर साल नई 60 लाख के करीब नौकरियां इस क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं। ऐसा अनुमान है कि करीब 30 लाख लोग एशिया के विभिन्न देशों में निर्माण क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। सिंगापुर में ही सिर्फ 1.25 लाख लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो कि भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से वहां जाकर के काम कर रहे हैं।
सर, नौकरी पे लगते समय कंपनियां नई उम्मीदवारों में किस तरह के कौशल ढूंढती है?
देखिए, इसमें जरूरी चीज ये है कि आपको काम करना आता हो और आप दिखा सकें अपने होने वाले एम्प्लॉयर को कि आपने वो सब काम ठीक से सीख लिया है जिसके लिए आपको पारंगत माना जा रहा है।
क्या लड़कियां भी निर्माण उद्योग में काम करके सफल बन सकती हैं?
बिल्कुल, आधे लोग जो काम करते हैं निर्माण उद्योग में ये लड़कियां ही होती हैं। आप किसी भी निर्माण की साइट पर जाएं, वहां देखेंगे कि बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन इनको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ होता है, इसलिए ये लोग थोड़ा कम तरीका काम करती हैं। प्रशिक्षण मिल जाने के बाद ये बहुत से ऐसे काम हैं जो कि लड़कों से भी ज्यादा अच्छे कर सकती हैं, जैसे फ्रेस्को पेंटिंग है, पेंटिंग है, ब्रिकवर्क भी ये लोग बहुत अच्छा करती हैं, और इसके अलावा ये बड़ी अच्छी सुपरवाइजर भी सिद्ध होती हैं।
अच्छा, तो शुरुआत में इस क्षेत्र में कितनी आमदनी हो सकती है?
आपको भोजन, निवास, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, आवागमन की सुविधा और इसके अतिरिक्त कुछ समय के बाद में प्रोविडेंट फंड, ये सब देने के बाद 4 से 5 हजार रुपए तक की शुरुआती तनख्वाह आपको मिल सकती है। इसके बाद आप मेहनत करते जाएं। हमारे पास ऐसे बहुत से ज्वलंत उदाहरण हैं जहां पर साल भर काम करने के बाद लड़के और लड़कियों दोनों को 12 से 15 हजार रुपए तक की तनख्वाह प्राप्त हुई है।
थैंक यू डॉक्टर स्वरूप जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
धन्यवाद, और मुझे भी बहुत आनंद आया आपसे बात करके।
वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब समय आ गया है नीलम, तुम्हारा वादा पूरा करने का।
कैसा वादा जीनी?
तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुमने किस व्यवसायिक प्रशिक्षण का चुनाव किया है। मगर एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपना निर्णय सुनाओ, एक बार जिन व्यवसायों की जानकारी हमने हाल ही में हासिल की है उन पर एक नजर डाल लेते हैं।
बोलो 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 बोलो, क्या याद है? बोलो 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 बोलो, क्या याद है? भूले हो क्या?
भूले हो क्या?
समझे कितना?
समझे कितना?
क्या याद है?
क्या याद है?
क्या याद है?
जीनी, मुझे याद है, तुमने हमें बिजली के व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी थी। ये प्रशिक्षण प्राप्त कर हम किसी भी विद्युत विभाग में या कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्वयं का व्यवसाय करने का विकल्प भी सभी के लिए खुला हुआ है।
नीलम, अब तुम मुझे किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में बताओ।
ठीक है जीनी, तो सुनो, सजना सवर्णा तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ, या फिर किसी बड़े ब्यूटी पार्लर पर काम भी कर सकती हूँ।
पर नीलम, क्या बुआ जी इसके लिए मानेंगी?
उनको मनाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ, शायद मान भी जाए, पर ऐसा काम चुनना जिसके लिए हमारे परिवार वाले हमें आसानी से इजाजत दे दे, शायद इसी में समझदारी होगी।
और वो काम क्या है?
जैसे सिलाई, मेरी माँ तो हमेशा चाहती है कि मैं सिलाई कढ़ाई सीखूं। अगर मैं माँ को इस प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगी तो मुझे पता है वो हंसते हंसते मुझे इसकी इजाजत दे देंगी, और इस प्रशिक्षण को करने के बाद मैं किसी कपड़ों की कंपनी में काम कर सकती हूँ, या फिर खुद का बुटीक भी खोल सकती हूँ।
और जो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में तुमने बताया था जीनी, मेरे तो वो खाद्य पदार्थों का नाम सुनकर ही मुँह में पानी आ जाता है, चिप्स, अचार, मुरब्बा और न जाने क्या क्या। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि प्रशिक्षण को अपनाकर लोग खाद्य कंपनी में काम भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा अपने घर पर भी खाद्य प्रसंस्करण का काम किया जा सकता है।
मुझे लगता है नीलम, तुम्हारी स्वयं के व्यवसाय में ज्यादा रुचि है।
अरे क्यों ना हो, आखिर इसमें मैं घर और अपने काम दोनों आसानी से जो संभाल सकती हूँ, और अगर मैं स्वयं के व्यवसाय को चलाने का प्रशिक्षण ले लूं, तो मैं अपने व्यवसाय को आसानी से ऊंचाइयों पर ले जा सकती हूँ।
तुमने हमें मोबाइल रिपेयर के व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में भी तो बताया था, जिसे अपनाकर लोग किसी भी मोबाइल कंपनी या फिर दुकान पर काम कर सकते हैं।
और राहुल, बीपीओ या कॉल सेंटर, ये विकल्प आज की बदलती तकनीकी दुनिया के हिसाब से एकदम सही है, और अगर कोई ठीक से अंग्रेजी नहीं भी जानता हो, बीपीओ में काम करने के प्रशिक्षण के दौरान अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अच्छे से दिया जाता है।
और आज ही तो तुमने हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, जिनकी इस काम में रुचि है वो इस काम में मशीन संचालन का प्रशिक्षण लेकर अपना भविष्य सवार सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि मैं ब्यूटी तकनीक, सिलाई और खाद्य प्रसंस्करण में विशेष रुचि रखती हूँ और इनमें से किसी भी काम में अपने व्यवसाय की शुरुआत करके मैं अपने साथ कई और महिलाओं को भी जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती हूँ।
नीलम, मुझे तुम्हारे विचार और तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा लगा। और कक्षा में बैठे बाकी बच्चों, अब बारी तुम्हारी है। मैं चाहूँगा कि तुम अपनी नोटबुक में उन प्रशिक्षणों के बारे में लिखो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे ठीक है। और हाँ, ये लिखना मत भूलना कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे उचित व्यवसाय है। तो नीलम, राहुल, अब मुझे जाना होगा।
जीनी, अभी जाना जरूरी है क्या?
काश तुम हमारे साथ हमेशा रह सकते।
तुमने हमें जो जानकारी दी वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी जीनी।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जीनी।
मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद तभी कबूल करूँगा जब तुम सही मायनों में अपने चुने हुए व्यवसाय में कामयाब होकर दिखाओगे।
जरूर जीनी, हम जरूर कामयाब होंगे।
तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब मैं चलता हूँ।
जीनी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी।
मायूस मत हो बच्चों, दुनिया बहुत छोटी है, हम जरूर फिर मिलेंगे।
ये ऑडियो कार्यक्रम .edu प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा अमरीकी जनता के जरिए सहभागी समझौता नंबर 386A00060014800 से संभव हुआ है। इस प्रोग्राम में प्रस्तुत रूपरेखा की जिम्मेदारी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर की है तथा ये किसी भी प्रकार से USA या US शासन की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करता है।
ना तो तेज हवा।